जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज की हमारी द्वारका यात्रा के दूसरे दिन के शाम के सत्र में आपका सबका स्वागत है। आज तारीख 26 दिसंबर है। आप सब लोग द्वारका के मंदिर का दर्शन करके आए। कितने लोग गए? सब लोग गए। हरे कृष्णा। तो द्वारका के मंदिर के विषय में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। द्वारका का मंदिर जो है वो समुद्र के तल से 150 फुट ऊंचा है। कितनी सीढ़ियां चढ़े आप? सेठ गए सीढ़ी चढ़े नहीं? ओके। समुद्र तल से वो कहते हैं कि 70 फुट की ऊंचाई पे है और भूतल से 150 फीट ऊंचा है। साथ साथ में ऐसे कहा गया है कि इसमें 52 गज का झंडा फहरा रहा है उसके ऊपर। 52 गज यानी एक गज 9 फीट का होता है। तीन फीट का सॉरी होता है, तीन फीट का, तीन फीट का कि नौ गज, नौ फीट का, तीन फीट का, 52 गज का झंडा फहराता है उसके ऊपर। ये मंदिर जो है वो 72 खंभों पर टिका हुआ है, पूर्व से पश्चिम लंबाई 88 फुट है और उत्तर से दक्षिण 70 फुट है। इस मंदिर के ऊपर ध्वजा स्तंभ जो है वो 25 फुट लंबा है, उस पर 20 फुट का ध्वज दंड बना हुआ है और उस पर 52 गज का कपड़ा लगाया हुआ है, ना विशाल। सूर्य चंद्र से चंद्रों के चिन्हों से अंकित इसकी पंचरंगी ध्वजा जो है वो आकाश में फहराती रहती है। तो द्वारकाधीश का मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। मैंने आपको सुबह बताया था कि भगवान के अंतर्धान होने के बाद में वज्रनाभ जब यदुओं के राजा बने उसके बाद वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बनाया। और रोचक कहानी ऐसी है इसकी कि इसमें पहले रणछोड़ राय की मूर्ति थी, रणछोड़ दास जो भगवान रण छोड़कर भाग गए वो मूर्ति यहाँ पर विराजमान थी और कई हजारों साल यहाँ पर वो रही, सॉरी सैकड़ों साल रही यहाँ पर। तो एक यहाँ से कितने दूर है डाकोर यहाँ से? 450 किलोमीटर दूर डाकोर गांव है और डाकोर का ओरिजिनल नाम है डंकपुर वन, डंकपुर वन, क्योंकि यहाँ पर डंक ऋषि तपस्या करते थे जिनकी तपस्या से वहाँ पर उस गांव का नाम डंक वन पड़ा और धीरे धीरे डंक वनपुर का डाकोर बन गया। तो आज वहाँ पर रणछोड़ दास की मूर्ति है जो पहले यहाँ पर हुआ करती थी। कारण यह है कि भगवान के एक सखा थे, उनका नाम था विजयानंद, विजय सिंह या विजयानंद, जो भगवान के सखा थे कृष्ण लीला में, लेकिन भगवान की लीला समाप्त होने के बाद वो बोडाणा बनकर आ गए, विजय बोडाणा गुजरात में। वो अभी अभी की बात है, मतलब भगवान के अंतर्धान होने के करीब 5000 साल के बाद की बात है। और वो इतने भगवान पर प्रेम करते थे कि वो डंकपुर से 450 किलोमीटर चल के आते थे द्वारका में दर्शन करने के लिए, हर साल आते थे। एक जगह सुना लिखा है कि वो रोज आते थे, लेकिन आई डोंट नो रोज 450 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगता है। एक घंटे में हम लोग 4 किलोमीटर चल सकते हैं, 5 चल से फास्ट चलेंगे तो 10 चल सकते हैं। तो 10 घंटे कितने हो गए बताइए, 10 घंटे चलेंगे, 10 घंटे दोबारा चलेंगे तो 20 घंटे तो उसमें गए, हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे विजय सिंह बोडाणा ने अपने उम्र के 70 साल तक किया काम। जो कथा मैंने सुनी उसमें लिखा था कि हर रोज आते थे वो। 70 साल के बाद में जब वो आखिरी बार आए तो उन्होंने भगवान से कहा कि अभी मैं नहीं आ सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा आवाज़ कम करेंगे। तो वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके लिए ठाकुर जी जो थे वो मूर्ति नहीं थे, व्यक्ति थे, उनसे बात करते थे। हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये भी अपने विग्रहों से बात करते थे। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात भगवान है। जो हृदय में भक्ति रखते हैं, जो प्रेम के भरे हृदय से उनको देखते हैं, उनको भगवान स्वयं चलायमान व्यक्ति नजर आते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में भी दर्शन करते हैं और साक्षात दर्शन भी करते हैं, उनकी वो अनुभूति है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति की स्थिति में जब वो थक गए तो उन्होंने कहा भगवान को अभी मैं वहाँ से चल के नहीं आ सकता, मुझे आप माफ़ कीजिए। तो भगवान बोडाणा से इतने प्रसन्न थे, इतने उनका प्रेम था उनके ऊपर कि जब बोडाणा ने ये कहा कि मैं नहीं आऊँगा कल से तो बड़े दुखी हो गए भगवान। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तो मैं आपके पास आऊँगा, और आपके पास रहूंगा, क्योंकि आपके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसे भगवान बोल रहे हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि आप कल आना आखिरी बार और कल दर्शन कर लेना, और कल जब आओगे ना तो बैलगाड़ी से आना, तो फिर मैं बैलगाड़ी में बैठूंगा और आपके साथ चलूंगा। लेकिन रात को वो अंधेरे में चलेंगे, जनता में चलेंगे, तो थोड़ा हल्ला मच जाएगा ना कि अरे भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। तो दिन भर सेवा करेंगे, ले लेंगे भग लोगों से और रात को चलेंगे। तो वो बैलगाड़ी लेकर आया तो सब लोगों को आश्चर्य आ रहा है, बैलगाड़ी से क्यों आ रहे हैं? लेकिन भगवान ने कहा था कि बोलना नहीं किसी को, इसलिए वो शांति चुपचाप से आए। दिन भर बैठे रहे वहाँ पर। रात का समय हुआ तो भगवान स्वयं, भगवान का विग्रह जो है वो चलकर बैलगाड़ी में आया। और अभी आप सोचेंगे कि भगवान बैठेंगे और वो चलाएंगे, नहीं, भगवान ने बैलों का दूरी अपने हाथ में लिया और बुढ़ाना को बिठाया उसके अंदर, और खुद बैलगाड़ी चलाते चलाते भगवान द्वारका से डंकपुर वन चले गए, डाकोर में चले गए, और आज भी वहीं पर विराजमान है। ऐसे भक्ति का चमत्कार है। हाँ, ये सब कहानी हम लोग सुनते हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि अच्छी कहानी है, तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच नहीं है ऐसा हमको लगता है, बहुत लोगों को लगता है ऐसी, सच नहीं है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जिन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से जीवन में भगवान के होने का अनुभव किया है, और जिन्होंने अपने जीवन में भगवान का हाथ कैसे है, कैसे भगवान भक्तों के जीवन में दखल देते हैं और उनको, उनके लिए कल्याण करते हैं, हाँ, ये जिन्होंने अनुभव किया है उनके लिए अद्भुत, ये अद्भुत बात नहीं है। से कई भक्त हो चुके जो भगवान से बात करते थे, भगवान से खेलते थे। श्रीनाथ जी भगवान जो थे, अभी भी हैं, वो नाथद्वार में हैं, वो पहले गिरिराज पे थे, उनके आठ भक्त पैदा हुए हैं, उनको अष्ट छाप कहते हैं। वो सारे आठों लोग जो थे वो भगवान से नियमित बात करते थे। उनकी लीला ऐसी थी कि जब चाहे भगवान मूर्ति के रूप में लीला करते थे उनके साथ में, जब चाहे मूर्ति के बाहर आकर बालक बनकर उनके साथ खेलते थे। भगवान के कहते हैं कि साक्ष्य लीला का जो भूख थी ना, वो कृष्ण लीला में पूरी नहीं हुई, तो उसको पूरी करने के लिए कली में भगवान गोपाल बनकर आए, मतलब आए थे तभी आए थे, लेकिन कली में दोबारा प्रकट हो गए वो, और जतिपुरा में रहते थे वो गोपाल मंदिर में। और वो अष्टछाप जो थे उसमें सूरदास थे, वल्लभाचार्य थे, गोवर्धन नाथ थे, विठ्ठलदास जी थे, बहुत सारे थे उसके अंदर, चतुर्भुज थे, कुंभन दास थे, उनके साथ भगवान घोड़ा घोड़ा खेलते थे, गेंद खेलते थे, मजाक करते थे उनके साथ में, उन पर चढ़ते थे, कभी भगवान उन पर चढ़ते थे, कभी भगवान उनको अपने कंधे पर लेते थे। तो जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उनके लिए ये कोई ऐसे कहानी नहीं है, साक्षात है भगवान का एक्सपीरियंस। और ये मत समझना कि उनके लिए केवल है, आपके लिए भी है। अगर हम लोग शुद्ध भक्त बनना पसंद करेंगे, ये सब दुनियादारी का आसक्ति छोड़ देंगे, हाँ, पाप करना छोड़ देंगे, व्यभिचार, जुआ, मांसाहार, नशा, झूठ बोलना, कपट मन में रखना, चीटिंग प्रपंचनी रखना छोड़ देंगे, शुद्ध हृदय बन जाएंगे और सर्वस्व भगवान को बना देंगे। हाँ, तुम्ही सर्वेश्वर सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पोड़िन तुम्हार घरे, हाँ, ऐसे बन जाएंगे हम लोग। दुनियादारी में ना रुचि है, ना कोई आसक्ति है, केवल भगवान के लिए ही जीवन है, तो भगवान आपके बन जाएंगे। और जो उन्होंने बुना बुरा बुराना को अनुभव दिया वो आपको भी देंगे। हाँ, इसलिए हम धाम में आते हैं। धाम में क्यों आते हैं? सब आसक्तियाँ छोड़कर आते हैं, आना चाहिए। ये दुनियादारी का जो पैसा है, प्रोफेशन है, अधिकार है, सुंदरता है, अधिक पावर है हमारी, प्रभाव है हमारा, प्रॉपर्टी है, सब में मन लगा है हमारा, बटा हुआ है मन, एक जगह पे नहीं है, उधर भी एक जगह पे नहीं है, ऐसे नहीं है केवल पैसे पे लटका हुआ है, सब जगह बटा हुआ है। ऐसे बटे हुए मन से अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी बटे हुए रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, ऐसे शास्त्र आचार्य कहते हैं कि जब धाम में आते हैं तो रजोगुण और तमोगुण को घर पे छोड़ के आना चाहिए। आप कौन है ये भी घर पे छोड़ के आना चाहिए। अगर आप बड़े अधिकारी हो बॉम्बे में तो छोड़ के आना चाहिए उसको। एक दीनहीन बनकर यहां पर आना चाहिए। एक दीन बनकर आएंगे तो दीनानाथ आपके नाथ बनेंगे। अगर आप दीन नहीं तो दीनानाथ नाथ कैसे बनेंगे आपके? सिंपल है ना बात। ये अगर मैं यहां पर आता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, धनवान हूँ, बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, वीआईपी हूँ, ऐसा समझ कर आऊँगा, तो वीआईपीओ के नाथ नहीं है वो तो दीनानाथ है, दीन वत्सल है वो, भक्त वत्सल है, भक्त कभी गर्व नहीं करता है। रुक्मिणी की कथा में देखते ना हम लोग, भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता प्रकट की है। भगवान को अपने भक्त के सामने कोई प्रिय नहीं है, अपनी इज्जत भी प्रिय नहीं है उनको, सब छोड़ सकते हैं भगवान अपने भक्त के कल्याण करने के लिए। तो ऐसे द्वारकाधीश जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर पहले रणछोड़ दास जी महाराज थे, बाद में फिर द्वारकाधीश का विग्रह स्थापित किया गया उन्हीं की याद में, ऐसे कहते हैं वल्लभाचार्य जी ने उनको स्थापन किया, ऐसे लिखा है। तो एनीवेज, आपने जो दर्शन किया है उस मंदिर को त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर कहते हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ जो सबसे सुंदर है, त्रिलोक में सुंदर है, वहां पर निवास करते हैं। क्योंकि जिस जगह पर कोई विग्रह होता है और वहां से वो कहीं और चला जाता है, और वहां पर जो दोबारा विग्रह आता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिभू मूर्ति कहते हैं, प्रतिभू। और प्रतिभू मूर्ति और मूल मूर्ति, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, वही व्यक्ति वहां पर अपने वही प्रभाव को लेकर वहां पर स्थापित हो जाते हैं। जिस भी विग्रह को वहां स्थापित करते हैं वो वही शक्ति को धारण कर लेते हैं। तो शायद लीला के माध्यम से रणछोड़ दास जी महाराज उधर बैठे हैं, लेकिन प्रभाव के माध्यम से वो यहीं विराजमान है आपके लिए। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए ना, तो वो जगन्नाथ भगवान कैसे हैं, उनके हाथ ऐसे खड़े हैं, पंजा नहीं है उनके, उंगलियां नहीं है, पैर भी नहीं है। हाँ, सुभद्रा जी को हाथ और पैर दोनों नहीं है, फिर बलदेव जी के ऐसे हाथ हैं और वो उनको पंजा नहीं है, तो आम आदमी को वो जरा सा और लगता है। लेकिन जब प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम भाव से गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे, तो मुरली बजाने वाले कृष्ण भगवान का दर्शन करते थे उसके अंदर एवरीडे। हमको आपको जगन्नाथ जी अलग दिख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं तो उनको दो हाथों से मुरली पकड़े हुए बजाते हुए नजर आते थे वो। ये भाव की बात है। हाँ, जैसा आपका भाव है वैसे है। जैसे वल्लभाचार्य का कोई अगर मंदिर में जाएगा तो वो भगवान कितने बड़े होंगे समझो, 12 फुट के, तो भी उनको बालक ही नजर आएंगे, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय जो है वो वात्सल्य भाव में है, उनकी सेवा वात्सल्य भाव की है। तो आप कहेंगे 125 साल के भगवान है ये, तो भी वो 6 महीने के भगवान के रूप में उनकी सेवा करेंगे, अधिकतर उनको विश्राम करते रहेंगे, क्योंकि बालक जो है अधिकतर विश्राम करता है, कुछ समय के लिए जगता है, उसी भाव से उनकी सेवा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की नजर में जैसे हैं वैसे रहते हैं वास्तव रूप में। बाकी जो दुनियादारी के लोग हैं उनको पत्थर, काला पत्थर, गोरा पत्थर, संगमरमर का पत्थर, लकड़ी की मूर्ति बोलेंगे, या पेंटिंग से बनाया हुआ बोलेंगे, या मट्टी से बनी मूर्ति बोलेंगे, क्या क्या वर्णन करेंगे उसका। लेकिन भक्त के लिए वो प्रेम के द्वारा दर्शन जिस प्रकार से होता है वैसे रहते हैं। है लकड़ी के विग्रह, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो हमको भी ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता होती है ना, वो देखने वाले की आंखों में होती है। काला कलूटा बालक भी होता है किसी का, लेकिन जब माँ उसको देखती है तो उसको दुनिया से सबसे बड़ा सुंदर तारा नजर आता है उसके अंदर। हाँ, बोलते कितना काला कलूटा गलीच्छा लड़का है, ऐसा लगेगा आपको, इतना कुरूप लड़का है ये। लेकिन जब उसकी माँ उसको प्रेम से देखती है, वात्सल्य भाव से, तो दुनिया में सबसे सुंदर चांद का टुकड़ा नजर आता है उसको, उस बालक के अंदर। हाँ, सोचिए इस बात को आप, प्रेम का कमाल है ये, वो प्रेम होना चाहिए। उसी प्रेम की अभिलाषा में हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमको वो प्रेम चाहिए जिसके भगवान भी भूखे हैं और उस प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देते हो। अरे हम लोग अपना प्रेम दुनिया के लोगों को बांटते हैं। हाँ, पति है, पत्नी है, घर में परिवार है, फिर भी दूसरों को दिल दे देते हम लोग, ऐसे को भगवान कैसे मिलेंगे। हाँ, जो स्वयं अपने पारिवारिक जीवन में एक निष्ठ है, स्वामी निष्ठ है, पत्नी निष्ठ है, पति निष्ठ है, वही भगवान से एक निष्ठ रह सकता है। जो अपने आगे सामने जो बैठे हुए लोग हैं, अपने माता है, पिता है, उनसे एक निष्ठ नहीं है, अपने पति है, पत्नी है, उनसे एक निष्ठ नहीं है, वो भगवान से कैसे एकनिष्ठ हो सकते हैं। अरे कभी शंकर जी के पास जाएंगे, हाँ कभी देवी के पास जाएंगे, जहां पर काम बनता है वहां जाएंगे पढ़ाई का एग्जाम कहाँ गया तो सरस्वती के पास जाएंगे, बोले सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ने भव सर्वदा, बोले अच्छे मार्क मिलने चाहिए एग्जाम आएगा तो। फिर जब बिजनेस करने लगेंगे तो लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। अच्छी लड़की चाहिए तो शिव जी के पास जाएंगे, अच्छा पति चाहिए तो देवी के पास जाएंगे। हाँ, ये हमारा बिजनेस माइंड है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, तो व्यवहार है, व्यापार है, व्यापार। तो ये जो एक निष्ठता है ये बहुत जरूरी है। ये मत समझना कि खाली पातिव्रत्य का ही डेफिनेशन शास्त्र में दिया है, पुरुषों के लिए भी एक निष्ठता बहुत जरूरी है। चैस्टिटी इज ऑल्सो मेंट फॉर मेन एज मच एज विमेन। हमको भी अपने पत्नी से एक निष्ठ रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि पुरुष का हृदय जो होता है ना वो बंबई के रेलवे का थर्ड क्लास का लेडीज का डब्बा होता है, उसमें कई लेडीज आती है उतरती है चढ़ती है उतरती है। समझ में आपको आया? मतलब इतनी जगह है उसके अंदर कि हजारों लड़कियों को मन में रख सकता है, वो उस पर चिंतन कर सकता है। ये पुरुषों की चेस्टिटी है। लेकिन पुरुषों को भी अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो अपने घर पे जो पत्नी है उस पर दिल लगाकर एक निष्ठ रहना चाहिए, उसी के लिए समर्पित होना चाहिए उसका हृदय और उसका मन। उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी अगर भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो जो पति भगवान ने हमको दिए हैं उन पर पूरी तरह से लॉयल्टी चेस्टिटी होनी चाहिए, पतिव्रता पातिव्रत्य होना चाहिए। जब वो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे तो भगवान फिर हमको कृपा करेंगे। भगवान को कन्विंस करना पड़ेगा कि आई एम लॉयल, तब जाकर भगवान उन पर कृपा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज जो लोग आपके आसपास है, जो रिश्ते नाते आपके हैं, वो पहले बड़े प्रेम से, कर्तव्य भावना से, एकाग्रता से और दिल लगाकर निभाने चाहिए। तब भगवान को यकीन होगा कि मेरे साथ भी ये कर सकता है ना। दुनिया में ऐसा बटा हुआ हृदय है तो मेरे साथ में कैसा रहेगा, जो 33 करोड़ देवता है कहीं भी भाग सकता है। तो भगवान भी उसको थारा देते नहीं है। भगवान तो कहे अनन्य भक्त चाहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम योजनो परिपासते, तब जाकर कहते हो तुम मेरे हो, तब तक तुम मेरे नहीं हो, तब तक तुम बटे हुए हो, कभी देवी के हो, कभी शंकर के हो, कभी गणेश जी के हो, कभी इसके हो, कभी फलाने के हो, कभी वागोबा के हो, कभी और किसी के हो। स्वार्थ के हेतु भगवान सबको पत्थर को भी भगवान बना लेता है अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सब बातें कहाँ से आई कि बोडाना जी भगवान से बात करते थे। जब आप अनन्य भाव से भगवान को समर्पित हो तो भगवान उससे भी अनन्य भाव से आपके लिए समर्पित होते हैं। इट इज रेसिप्रोकेशन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। हाँ, जितने हम चेष्ट हैं उतने भगवान भी चेष्ट होते हैं हमारे साथ, जितने हम नहीं हैं उतने भगवान भी नहीं हैं। और बटे हुए हैं तो भगवान हमारे लिए पत्थर हैं। अगर हम भगवान से एकनिष्ठ हैं तो भगवान भी हमारे लिए एकनिष्ठ हैं। भगवान अपना सब कुछ छोड़ देते हैं भक्त के लिए, भिखारी बन जाते हैं। बोलो, बीच रात में एक भक्त के लिए, वो जगन्नाथपुरी के रात में उधर दस्त कर रहा था समुद्र के किनारे, इतना अंधेरा, भगवान उसकी टट्टी साफ करने के लिए रात को पैदा हो गए उधर, और भक्त भी इतना महान था, वो बोल रहे भगवान आप कितने दयालु हो। तो लड़का बोलता है अरे मैं भगवान भगवान नहीं हूँ, तो मैं तब गुजर रहा था यहाँ से, देखा आपकी अवस्था ऐसे तो आ गया। तो भक्त बोलता है अरे भगवान इतनी रात गए यहाँ पर समुद्र किनारे, कौन आ सकता है, आप ही तो आ सकते हो, अभी क्यों छुपा रहे अपने आप को। तो भगवान को भक्त की भावना से एक बालक के रूप से खुद का रूप दिखाना पड़ा, मजबूर हो गए भगवान, भक्त मानने को तैयार नहीं। अरे नामदेव जी एक बार भजन कर रहे थे तो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गए, तो नामदेव क्या बोलते हैं, अरे भगवान आज बड़ा अजीब रूप धारण कर लिया आपने, कभी क्या क्या बन के आते हो, कभी बंदर बन के आते हो, आज ब्रह्म राक्षस बन के आ गए। तो ब्रह्म राक्षस जो सच में ब्रह्म राक्षस था वो जोर से आवाज करने लगा, अरे भगवान कब तक लीला करोगे ब्रह्म राक्षस की, अभी तो बस हो गया ना, अभी आ जाओ अपने रूप में। ब्रह्म राक्षस और जोर से, इनका भाव वही है, अरे भगवान कितनी बार चिल्लाओगे, मैं जानता हूँ कि आप मेरे विट्ठल हो, आ जाओ अभी विट्ठल के रूप में। आखिर में नामदेव जी का भाव देखकर ब्रह्म राक्षस के अंदर जो परमात्मा थे ब्रह्म राक्षस को फोड़ कर विस्फोट करके परमात्मा के रूप में विट्ठल जी प्रकट हो गए उसके अंदर। सोचिए आप, प्रकट होना पड़ा उनको, भक्त के भाव के सामने भगवान शरण हो गए, क्या करें, भक्त की निष्ठा ही ऐसी है। कितनी अद्भुत बात है। देखो आप, ये सब लोग क्यों पढ़ते हैं और क्यों सुनते हैं? ये हमारे लिए एक आशा है कि हम इतने पतित जीव हैं, इतने बटे हुए हैं हम लोग, इतने व्यभिचारी जीव हैं हम, हाँ हमारा मन सब जगह बटा हुआ है, इसलिए हमको व्यभिचारी कहते हैं। ऐसे लोगों को फिर क्या होप है? यही होप है, अगर भगवान का नाम लेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अच्छे संग में हमेशा रहेंगे, तो एक ना एक दिन यही भाव हमारे अंदर भी आएगा। इस आशा से हम लोग धाम में आते हैं, इस आशा से हम लोग भक्तों के संग में आते हैं। अरे आप अकेले भी द्वारका में आ सकते हो, इतना भीड़ में आने की जरूरत क्या है 300 लोगों के? मंदिर खाली भी रहेगा तो आप लोगों से एक भीड़ बन जाती है उधर, आप लोगों की एक लाइन बन जाती है कि नहीं? आप लोगों का 3-3 घंटे का दर्शन का समय हो जाता है, फिर भी हम जाते हैं भक्तों के संग में। अरे क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं मेरे भक्तों के बीच में रहता हूँ, मुझे वाकई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ मेरे भक्त एकत्र होते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वहीं पर मैं रहता हूँ हमेशा। इसके अलावा मुझे और कोई अन्य अति प्रिय स्थान नहीं है। तो वो स्थान क्या है? भक्तों के बीच में का सहारा, इसलिए हम उसके बीच में डोलते रहते हैं, क्योंकि हमको उनका संग चाहिए ना, और वो कहते हैं मैं इधर हूँ तो हम लोग उसमें जाते हैं। फिर काले लोग होंगे, गोरे होंगे, चाइनीज होंगे, जापानीज होंगे, चपटे होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, कोई मतलब नहीं उसका। जो भगवान के नाम को पुकारता है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान में एक निष्ठ है, उनके संग हमको रहना है। फिर दिखने में गंदा हो, बदबू वाला हो, सुंदर नहीं हो, बिखरे हुए बाल हो, चलेगा हमको? क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो भगवान के लिए है। जिसके हृदय में भगवान प्रज्वलित हैं, हाँ उपस्थित है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और है, तब जाकर उनके भक्तों के बीच में भगवान हमको दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, अनुभूति देते हैं, साक्षात्कार भी देते हैं। इसलिए बुढ़ाना की कहानी बहुत प्रेरणा कहानी है, भगवान स्वयं उनके साथ चले गए, कहते मैं आपके बिना रह नहीं सकता। ऐसा नहीं कि द्वारका में भक्त लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन बुढ़ाना तो बुढ़ाना था, इसकी वजह से भगवान ने उनके लिए प्रतिसाद दिया। एक भक्त के लिए पूरी द्वारका नगरी छोड़ के चले गए लंकवन में, सोचो आप, यही भक्ति का चमत्कार है। इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ दूर तक आए हुए हैं, और इसी की अपेक्षा करना चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहना चाहिए। हो सकता है वो फाफड़ा जलेबी के मेनू था और जलेबी समाप्त हो गई, तो क्या हुआ, दोबारा बनेगी बम्बई में जलेबी, लेकिन द्वारका दोबारा नहीं मिलेगी आपको, कभी वापस प्लान बढ़ेगा तब मिलेगी। हाँ, इसलिए परवाह मत करना उसकी, क्या मिला क्या नहीं मिला उसका गणित मत करते बैठना, वो तो बनिया गणित करते रहते हैं, तो आपकी ज़रूरत क्या है? बनिया बन के आने की जरूरत नहीं है, भक्त बनकर आओ, फिर भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हो, वो उद्देश्य के लिए आप रहो यहाँ पर, तब आपका एकाग्र चित्त भगवान देखेंगे ना, तब वो आपके लिए प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको दर्शन देंगे, हृदय में अनुमति देंगे कि मैं हूँ यहाँ पर, ये मूर्ति नहीं है, मैं हूँ खुद यहाँ पर, आपको देख रहा हूँ और आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, ऐसी अनुभूति आपको मिलेगी। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ मिलती है अनुभूति, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसे हम बता रहे हैं, ये हृदय की बात है। अगर आपका हृदय वैसा है तो भगवान दिखेंगे आपको उसके अंदर, चलते फोरते भी मिलेंगे, कभी घूमते घूमते मिल जाएंगे आपको, किस रूप में मिलेंगे क्या पता। तैयार रहो आप लोग, भावना से तैयार रहो, साधना से तैयार रहो, निश्चय से एक निष्ठा के आधार पर तैयार रहो, फिर भगवान कोई दूर नहीं है। अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो कोसों मील भगवान से हमको दूर भेज देती है। जब नम्रता आ जाती है उस अहंकार के जगह पर, अरे भगवान तो हृदय में बसे हुए हैं, वहीं पर मिलते हैं आपको, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं सब जगह पर, लेकिन फिर भी आते हैं ढूंढने के लिए हम, क्योंकि हमारी अभी तक अहंकार की भावना नष्ट नहीं हुई ना, तो साफ करने के लिए आते हैं, झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। भक्तों के सब में झाड़ू लग जाती है इसलिए हम आ जाते हैं, भक्तों के सब में पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे द्वारकाधीश भगवान कृपा करो दया करो, हे दयानाथ हे दीनानाथ दया करो, श्री राधे श्याम। तो द्वारकाधीश का दर्शन जो है वो बहुत अद्भुत है, हाँ उसका वर्णन आपको बताते हैं। यस्यांगी भृगलक्ष्म कौस्तुभमणि स्रग वैजयंती फणिम कक्षो मलमस मल्ल समक्ष नाभिकमलम यज्ञोपवीतम बलम शंखम चक्र गदेज पद्म सुखदानंदादय पार्षदा राजन्ते चरणाश्रिता यदुपतेस्तम द्वारकेशम भजे। 16 वस्तुएं भगवान के शरीर पर हैं द्वारकाधीश के। पहली है उनका श्री अंगज, खुद जो उनका शरीर है पूरा, वो चारों युगों का प्रतीक ऐसा माना गया है उसको। उसके बाद में कौस्तुभ मणि है। ये जो कौस्तुभ मणि है, ये जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया था ना, तो उसमें से प्राप्त हुआ था। 14 रत्न पैदा हुए थे ना, एक कौस्तुभ मणि है जो भगवान ने अपने छाती पर विराजमान कर लिया। फिर भगवान अपने छाती पर एक और चिन्ह, उसको वो क्या कहते हैं, गौरव से रखते हैं, वो कौन सा चिन्ह है, भृगु चरण चिन्ह। जब भगवान की भगवत्ता की परीक्षा हुई तो भृगु मुनि गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपमान किया, ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, शिव जी को त्याग दिया तो शिव जी गुस्सा हो गए, फिर आके विष्णु जी को जाके सीधा लात मार दिया छाती पे। तो विष्णु जी आके बोले, अरे कहीं पैर को चोट को नहीं आई ना, मेरी छाती वज्र के समान है, तुम्हारे कोमल चरण जब लगे तो छाती को दर्द होना छोड़ दो, तुम्हारे पैर को दर्द होगा, कैसा है पैर तुम्हारा, अच्छा है ना। तो समझ गए कि भगवान है। छाती में लात का प्रहार खाने के बाद भी वो लात मारा हुआ पैर का जो दर्द है उसके बारे में सोच रहे हैं, ये भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। तो वो चिन्ह जो है, वो भगवान ने तो बड़े गौरव के साथ में बोला कि इसको मैं धारण करूंगा, अरे तो ब्राह्मण का चरण चिन्ह है ये, मैं तो धोता हूँ उसको, प्रक्षालन करता हूँ, वो पानी को पीता हूँ, उसको सर पे धारण करता हूँ, ऐसा आपका चरण चिन्ह है, आप ब्राह्मण हो, मेरे लिए वंदनीय पूजनीय हो। कितनी बार ब्राह्मण का चरण धोया है, हाँ राजसूय यज्ञ में धोया, सुबह हमने बताया था, सुदामा का धोया, कितने ऋषि मुनि आए, नारद मुनि का तो 50 बार धोया सबका। लेकिन लक्ष्मी देवी को अच्छा नहीं लगा, बोले आप कुछ भी सोचते होंगे, मैं नहीं सहन कर सकती है, मेरे पति देव के चरण छाती पर लात मारी है, क्या समझते हैं आपने आपको, जाओ सब ब्राह्मण गरीब हो जाएंगे, कोई धनवान नहीं बनेगा। लक्ष्मी जी ने अपना भाव में अपना काम किया, भगवान ने अपने भाव से अपना काम किया, दोनों परफेक्ट है। फिर भगवान ऐसा नहीं बोला कि लक्ष्मी साप दिया ना, चलो चरण चिन्ह कैंसिल करो यहां से, डिलीट मारो यहां से, ऐसे नहीं किया, हमने रखा आपने। एक अलंकार के रूप में भगवान अपने भक्तों के चरण चिन्ह रखते हैं। लक्ष्मी देवी के गुस्से से वो भृगुमुनि जो है ना, वो हंटर बने, शूद्र बने, आगे कथा आएगी उसकी, बताता हूँ बाद में। तो भृगु चरण चिन्ह उनके छाती पर है। इसके बाद में क्या है, यज्ञोपवीत। हम जानते हैं ना, जब वामन देव बनकर आए थे तो उनका सुंदर ब्राह्मण संस्कार किया गया था, स्वर्ण यज्ञ चिन्ह यज्ञोपवीत उनके छाती पर प्रकट हो गया था, तो यज्ञोपवीत भी उनका श्रृंगार में सम्मिलित है। फिर नाभि कमल है उनका, एक अलग अलंकार है, कमल के रूप में नाभि है उनकी, जिसमें से पूरे विश्व का निर्माण होता है, सारे जगत का निर्माण उस नाभि से होता है, हम भी नाभि से जुड़े होते हैं दुनिया में, है ना। माता के घर में कैसे रहते हैं, नाभि के रूप में रहते हैं, नाभि जो होती है ना वो हमको जोड़ती है, पोषण देती है हमको। तो ये दुनिया में भी भगवान के तरफ से हमारा पोषण होता है, हम सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देखो कितना धनवान हूँ मैं, इतने पसीने बहा से जीरो में से दुनिया निर्माण किया है, ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन सब उनका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, गर्व करने लायक कुछ नहीं है अपना। इधर एक ही चीज़ में गर्व करना है, उसमें गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपकी है, वो है आपका भाव भगवान के प्रति। उसके बाद में कालिया नाग, जो भगवान ने दमन किया था, उसका भी चिन्ह द्वारकाधीश के शरीर पर है। हम जानते हैं ना, वासुकी के भाई, शेषनाग के भाई, तक्षक के भाई कालिया, कद्रु के पुत्र जो थे, कश्यप के पुत्र कद्रु देवी के द्वारा निर्माण हुए, उसको भगवान ने दमन किया था उनका वृंदावन धाम में। मारने वाले थे उसको, लेकिन पत्नी आ गई बेचारी विनती करते करते, तो पत्नियों की भक्ति की वजह से पति बच गया, और ना केवल बच गया, पाप से मुक्त तो हो गया, विष से मुक्त हो गया, द्वेष से मुक्त हो गया, और मरने के बदले में भक्ति पैदा हो गई हृदय में। फिर कहा इसका मतलब क्या है, पत्नियां भक्त थी उसकी, पति अगर भटक भी जाता है और पत्नी भक्त रहती है तो पत्नी की भक्ति के बल से पति रास्ते पे आ जाता है। अगर पत्नी भटक जाती है और पत्नी पति भक्त है, एक निष्ठ भक्त है पति, तो पति की कृपा से पत्नी लौट के आ जाती है रास्ते पर और फिर जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्त का संग करो। अगर भक्त आपकी पत्नी है, भक्त आपका पति है, भक्त आपका भाई है, भक्त आपका बेटा है, हाँ भक्त आपके माता पिता है, भाग्यवान हो आप। किधर भटकेंगे, इधर उधर, फिर भी लौट के आएंगे क्योंकि वो आपको पकड़ के लाएंगे। अरे मत जा इधर, भटकोगे, तड़पोगे, मर जाओगे, पतन हो जाएगा आपका। भक्त का पल्लू पकड़ के रखो, भक्त आपको बचाएंगे। तो पत्नियों ने कालिया को बचाया, कालिया महान भक्त बन गया। आज फिजी आइलैंड में कालिया का मंदिर है, वो राक्षस नहीं है, वो भगवान का वैष्णव भक्त है, उसकी पूजा की जाती है वहां पर। कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक विषैला सांप था वो वृंदावन में, और आज वो फिजी में मंदिर में भगवान बैठकर बैठा हुआ है। ये चमत्कार क्यों होता है? ये भक्तों का संघ का परिणाम है। भक्तों का संघ पकड़ के रखो, हाँ, कथा सुनने के लिए खाली नहीं, हृदय से पकड़ के रखो, श्रद्धा रखो भक्तों के अंदर, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्त के अंदर श्रद्धा रखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, भगवान को अपने भक्त के अंदर श्रद्धा है, इसलिए भगवान भी भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। जहां जहां भक्त है वहां पर जाके निवास करते हैं, क्योंकि भगवान यत्र गायन्ति मग भक्ता से क्यों बोलते हैं, उनको श्रद्धा है अपने भक्त के ऊपर। अरे भगवान को जिनको हम पूछते हैं, भक्त लोग पूछते हैं, उनको अगर भक्त में श्रद्धा है तो भगवान के भक्तों को भक्त में श्रद्धा होनी चाहिए। इज इट नॉट ट्रू? आगे हमारे भगवान के ऊपर मलकच्छ है। मलकच्छ मालूम है क्या होता है? ये कुश्ती वो तो करते हैं ना लोग, तो कुश्ती वाले के ऊपर भी एक आवरण होता है कुश्ती, अभी तो नहीं रखते हूँ, पुराने जमाने में मल्ल लोग भी अपना एक मल्ल का ड्रेस पहनकर युद्ध करने आते थे। तो भगवान जब अखाड़े में आए, कंस के आए ना, तो उनको मल्लकच्छ पहनाया गया। ऐसे कहते हैं कि चाणूर मुष्टिक शल तोमर कुश चाणूर मुष्टिक तोमर शल और एक नाम था पांच, वो सब लोग भगवान का ये दिव्य रूप देखकर बहुत प्रभावित हो गए। वो सब देखते रह गए उनको अखाड़े में, इतना सुंदर मल्ल जो है बालक मल्ल मल्लकच्छ पहनकर आ रहा है। तो मल्लकच्छ आज भी धारण करते द्वारकाधीश भगवान। बाद में क्या धारण करते हैं? वैजयंती माला। वैजयंती माला वो माला है, जब ही समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसके अंदर लक्ष्मी पैदा हो गई। लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, मतलब ये लीला में, वह तो भगवान के वैकुंठ की वो परम सखी है, वहीं रहती है, लेकिन जब दुनिया में लीला करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी को समुद्र कन्या कहते हैं। लक्ष्मी जब आई ना, तो हाथ में वैजयंती माला लेकर आई, सब देवता सब असुर देख रहे हैं, क्या माला मुझे पहनाएगी? सब लोग देख रहे हैं, मुझे पहनाएगी। लेकिन लक्ष्मी है वो, एक निष्ठ पतिव्रता है वो, सब जगह माला लेके घूमी हो, इनको लग रहा है कि इनको पहनाएगी, इनके पास से गुजर रही है, देख रहे हैं, मुझे पहनाएगी। सीधे गई और भगवान विष्णु को पहना दिया उसने। जो भगवान वहां पर अजीत भगवान बनकर मंदार पर्वत बैठे थे, वो उनको जाकर पहना दिया उसने, क्योंकि जन्म जन्मांतर तो एक ही भगवान है उसके, किसी भी रूप में आए। पार्वती देखो, पहले सती के रूप में आई थी, दाह कर लिया अपना, हाँ, फिर पार्वती बनकर आई पर्वत के पुत्री के रूप में, फिर भी किसको वरा उसने? शिव जी को ही वरा। सती के रूप में भी शिव जी को ही वरा, और पार्वती के रूप में भी शिव जी को वरा। जन्म जन्मांतर तक एक ही नाथ होना चाहिए अपना, वो है भगवान कृष्ण। दूसरे पार्वती के लिए शंकर जी है, लक्ष्मी के लिए विष्णु है, हम सबके लिए कौन है? हम सबके लिए भी वही विष्णु है, श्री कृष्ण भगवान। एक नाथ होना चाहिए हमारा जीवन में, जब एक नाथ होता है और उसके साथ हम एक निष्ठ होते हैं तो हम जीवन सफल हो जाता है। तो ये वैजयंती माला जो लक्ष्मी देवी दे उनको पहनाई थी, वो आज तक धारण करके वो घूमते रहते हैं। फिर वो उनके हाथ में पांचजन्य शंख है। जब वो सांदीपनि मुनि के बालक को ढूंढने गए थे ना, भगवान गुरु जी के पुत्रों को ढूंढने गए थे, उन दक्षिणा मांगी उन्होंने, क्या चाहिए दक्षिणा में? तो उन्होंने कहा मेरे खोए हुए पुत्र को ढूंढ के निकालो। तो भगवान अर्जुन को लेकर गए और ढूंढ के निकाला, तो उस टापू में उन्होंने पांचजन्य नामक राक्षस का वध किया। वध करने के बाद में उनको वहीं पर शंख मिला, वो भगवान ने खुद के लिए धारण किया, बालक को ढूंढकर गुरु जी को अर्पण कर दिया। वो पांचजन्य शंख जो है, जब वो बजता है ना, तो भक्तों के हृदय में आनंद के फव्वारे फूटते हैं, और राक्षस के हृदय में डर डर बैठ जाता है, थरकाप हो जाता है उनका, भय से कांपने लगते हो। आवाज़ एक ही है। आवाज़ की पूरी एम्पलीट्यूड सब एक ही है उसका, लेकिन आपका भाव कैसा है उसके ऊपर आपको डर लगेगा या तो आनंद होगा। मेरी उम्मीद यह है कि आपको आनंद होगा लेकिन मन में अगर किंतु परंतु है तो डर भी लगेगा, साथ में मिक्सचर भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट वो पांच जन्म जो है बड़ा पवित्र धन शंख है। जब भगवान ने बजाया था कुरुक्षेत्र में तो कौरव के लोग ऐसे कांप रहे थे उसको देखकर, उसको आवाज सुनकर। पांडव पक्ष में आनंद ही आनंद हो गया था, उत्साह बढ़ गया उनका, और बोलते ना कि मूड पर मास चढ़ला शरीर आवर्ती, ऐसा उनका और एक शक्ति बढ़ गई उनकी। भक्ति होनी चाहिए अल्टीमेटली, भगवान जब बोलते हैं तो भक्त के हृदय में आनंद होता है, और दुर्योधन जैसे राक्षस के हृदय में बहुत द्वेष और अलग अलग भावनाएं निर्माण होती। सुदर्शन चक्र भी धारण किया उन्होंने, ये कहाँ प्राप्त हुआ बहुत पुरानी कथा है। चक्र भगवान अलग अलग जगह पर बार बार प्रकट हो गए हैं, जैसे यहाँ पर चार कुमार तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने भी चक्र जो है व्यक्ति रूप में प्रकट हुए थे, है ना। वैसे जब दामा नामक का एक राक्षस था, तपस्या करके उसने तीन लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को हाहाकार करके छोड़ दिया था उसने, तो उस समय भगवान विष्णु ने शिव को प्रसन्न किया लीला में, तो शिव जी ने उनको 12 आरा वाले चक्र को भेंट में दे दिया। तो भगवान ने वो राक्षस का वध कर दिया और चक्र अपने पास रख लिया, वो चक्र को धारण करके घूम रहे वो। एक जगह ऐसे वर्णन भी आता है कि अग्निदेव ने उनको चक्र भेंट में दिया। ये लीला है भगवान की। चक्र भी वैसे अनंत है, चिरंतन है, भगवान का चिरंतन शस्त्र है वो। वैकुंठ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनके साथ में रहते हो, लेकिन लीला करते हैं ना तो अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हो सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान के चिरंतन शस्त्र है वो। तो ये सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान को द्वारकाधीश का सौंदर्य बढ़ाते हैं। फिर क्या है, कौमुद की गदा। जब एक बार भगवान अर्जुन, ये कथा कल भी आएगी, तो जब ये अग्निदेव को खांडव प्रस्थ खिलाया भगवान ने जलाकर, तो प्रसन्न होकर भगवान को अग्निदेव ने कौमुद की गदा भेंट दिया, और साथ में अर्जुन को क्या दिया, गांडीव धनुष दिया, दो ऐसे तोणीर दिए जिसमें अनंत बाण है, कभी खत्म नहीं होते, एक रथ दिया बहुत सुंदर। जो भगवान का भक्त होता है ना उसका हमेशा कल्याण ही होता है, याद रखना आप, ही नेवर फेल्स। हो सकता है उसके पैसे निकल जाएं, वो दरिद्र हो जाए, उसका सब धन छीना जाए, हाँ, यस्याहम अनुगुणामी हरिष्ये तद धनम शनै शनै, जिस पर मैं कृपा करता हूँ ना, जो मुझ पर प्रेम करते हैं, जब मैं उस पर कृपा करता हूँ तो पहले दुनियादारी की वस्तु में सब छीन लेता हूँ उससे, उसको अपना बना लेता हूँ। आप बोलेंगे देखो देखो ये भगवान के भक्त किया ना, देखो ऐसा हो गया, देखो पांडव देखो वनवास में चले गए, देखो ये आदमी भिखारी हो गया, ये सब शिव जी की भक्ति करो बहुत धन मालामाल हो जाते हो, कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि कृष्ण की भक्ति करने के बाद में जो भी अनुकूल नहीं है वो सब चला जाता है। स्नान करने से क्या होता है, जो जो मैल है आपके ऊपर वो खत्म होता है और आप चमकते हो स्नान करने के बाद, है ना। मतलब आप बोले अरे इतना सारा मैल चला गया मेरा, कितना कीमती था वो, ऐसा बोलेंगे क्या? जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोला अच्छा हो गया, साबुन अच्छा था ऐसा बोलेंगे आप। उसी तरह से जो भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर जो प्रतिकूल वस्तु है सब निकल जाती है, जो अनुकूल वस्तु है वो रह जाती है। वो प्रतिकूल वस्तु आपको बड़ी अच्छी लगती होंगी और आप सोचेंगे देखो इतनी अच्छी वस्तु निकल गई, देखो पैसा निकल गया, देखो प्रॉपर्टी भी चली गई उसकी, ऐसा आपको लगेगा, हमको लगेगा, जो हमारी आसक्ति बनी हुई ना उसके अंदर। लेकिन जो भक्त है वो बोलेगा ये तो कृपा है भगवान की। प्रभुपाद जी का भी ऐसा, जो बंगाल केमिकल था ना, वो एक दिन दब लुट गया, घड़ी तक लुट गई उनकी, तो प्रभुपाद जी हंसने लगे। देखो तब उन्होंने ये श्लोक अपने आप बोल दिया ऐसे, तस्याहम अनुगुणामी हरिष्ये तद धनम शनै, तो भगवान की कृपा है, वो चाहते हैं कि उनकी ओर में आ जाऊं। सब कुछ छीन रहे, परिवार छीन लिया, कंपनी का नुकसान कर दिया, ब्लॉकआउट हो गया, बोला अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच। एक भक्त ही थैंक यू बोल सकता है, और थैंक यू कोई बोल नहीं सकता है दुनिया में। तो क्या ये बात कहाँ से आई, कौमुद की गदा जो उन्होंने अग्निदेव से प्राप्त की थी वो भगवान धारण करे हुए हैं। पद्म, पद्म कहाँ से मिला, कितना भगवान भक्त पर प्रेम करते, देखो ये गजेंद्र था कोई हाथी, पुराने जमाने में वो इंद्रधनुष राजा था, शाप मिल गया तो हाथी बन गया वो, हाथी मती हो गई उसकी, हाथी बन गया, बहुत सारा भोग लिया इधर उधर का। एक दिन विहार कर रहा था जल में तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको। इतनी पावर थी, इतनी पत्नियां, इतनी सेना, इतनी सारा ऐश्वर्य था, किधर गया? अरे जल के अंदर जब मगरमच्छ पकड़ता है ना, कुछ काम नहीं आता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मगरमच्छ पावरफुल था, 10,000 साल युद्ध किया उसके साथ, तब दिखाई पड़ा कि मृत्यु सामने खड़ी है। अभी ये सारा इतना बड़ा बवंडर बना के रखा है ना, पूरा परिवार का और सैनिकों का, ऐश्वर्य का, भोग का, सब मिटने वाला है। देखा इधर उधर सब रो रहे हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, सब रो रहे हैं, किसको पुकारूं, सब रो रहे हैं, किसका सहारा ढूंढूं। अरे सहारा मिला था जिस जिस का हमने, सहारा लिया था जिस जिस का हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। देख रहे हो, इसका सहारा लिया था, जो विश्वास रखा था, सब डूब गए, मैं भी डूब रहा हूं, करूँ क्या? अभी कुछ तो करना चाहिए ना, अभी ऐसे स्थिति में बड़ी अनुभूति है ये, जो जो मेरा मेरा था वो सब कुछ भी मेरा बचा नहीं, और जो मेरा मेरा कहा था वो कुछ काम का भी नहीं है। ऐसा साक्षात्कार हुआ मन में, तो क्या किया, उस सरोवर का एक कमल उठाया, आकाश की ओर फेंक दिया, हे विष्णु भगवान, हे वैकुंठ नाथ, अब आके एक सहारा हो, सब सारे यहाँ पर डूब रहे, देखो कुछ काम के नहीं है यहाँ पर, क्या करूं, आप एक सहारा हो, ले लो मेरा प्रेम भरा कमल, प्रेम से भरा हुआ को अर्पण कर रहा हूं। अरे वो भगवान ना वैकुंठ में थे। आज भी अगर आप साइंटिफिक दृष्टि देखा जाए ना, तो अब जो खरबों मील यहां से वैकुंठ दूर है, अगर भगवान को भी गरुड़ को लेकर निकलेंगे ना भगवान, तो भी वो कई साल के बाद आएंगे, गरुड़ भी कितना भागेगा बेचारा। तो ये तो भक्त पुकार रहा है, वो 2-4 सेकंड लेट हो गया तो मगरमच्छ खा जाएगा मेरे भक्त को, पुकार रहा है मुझे, तो भगवान गरुड़ बैठे, चलो जल्दी अभी तुरंत, 2 सेकंड में पहुंचना है, कोई स्पीड का मत बताओ मुझे, अभी अभी पहुंचना है उधर। तो बेचारे गरुड़ निकले, अपनी पूरी गति से लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, गरुड़ के मुंह से झाग आया, इतना जोर से भगाए तो क्या होगा, और क्या ना क्या होगा उसके मुंह में बेचारा, उसका भी एक लिमिट है ना, है सबसे फास्ट वो। लेकिन जब भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि इतने खरबों मील का अंतर जो है कुछ सेकंड में गुजारना है, तो बेचारा विशुद्ध हो गया वो। तो भगवान बोले भी क्या करूं, व्हीकल ही पंक्चर हो गया। नहीं, गरुड़ को कंधे पर लिया भगवान ने, और कुछ ही क्षण में वहां पहुंच गए, और चक्र से उस मगरमच्छ को काट डाला, और अपने दिव्य कर कमलों से उसको बाहर निकाला, और जैसे भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, तुरंत हाथी जो है वो हाथी मती से पहले मुक्त हो गया, फिर हाथी शरीर से मुक्त हो गया, और इंद्रदुम्न के रूप में प्रकट हो गया, सब कर्म के बंधन टूट गए, और वो जो मगरमच्छ था वो भी गंधर्व हुहू बनकर वहां प्रकट हो गया। लेकिन कमाल किसका था, जो प्रेम से कमल अर्पण किया था ना, वो भगवान ने संभाल के रखा है, आज भी पकड़ के खड़े हो वो कमल, गजेंद्र ने अर्पण किया था उनको कई खरबों साल पहले, आज भी अपने भक्त का प्रेम जो है ना हाथ में लेके खड़े हैं, ये देखो मेरे भक्त का प्रेम, प्रेम से मुझे पुकारा था उसने, संभाल के रखा है उसको। हम लोग क्या करते हैं, हमारे गर्लफ्रेंड ने कुछ एक पत्ता भेज दिया तो उसको बुक में रखते हैं, ये मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे 14 साल की उम्र में दिया था उस झाड़ के नीचे। अरे लेकिन क्या फ़ायदा है उसका, कौन से दुख से बचाएगा आपको वो, हाँ लेकिन भगवान ऐसा स्मृति चिन्ह रखते हैं, स्मृति चिन्ह। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे हैं और भगवान के भक्त कैसे हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। समझना बहुत जरूरी है, हम सब लोग ऐसे ही है, बड़ी अच्छी कविता करते हैं गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर, क्या क्या करते हैं हम लोग, ये सब बेकार है, ये यूजलेस बातें, निरर्थक बातें, डुबाने वाली बातें, दुनिया के चक्र में फंसाने वाली बातें, सब झूठ है ये। एक ही सच है, भगवान और भगवान के भक्त, और दुनिया में कुछ सच नहीं है, वही तारक है, वही दयालु है, वही कंपैशनेट करुणामय है, और सब झूठ है दुनिया में। तो ये कमल जो है वो एक बार कभी हाथी ने फेंका था आकाश में, उसको पकड़ के रखा भगवान ने, आज भी जब कृपा करते ना तो कमल से करते हैं, शंख से करते हैं, दंड देते हैं ना तो चक्र और गदा से देते हैं, दो हाथ में शंख चक्र, दो हाथ में पद्म, और नहीं, दो हाथ में गदा और चक्र और दो हाथ में पद्म और क्या शंख। भक्तों के लिए शंख और पद्म, राक्षसों के लिए चक्र और गदा। आपको क्या चाहिए? वो कुछ भी चलेगा, भगवान की तरफ से आया तो कुछ भी चलेगा, बिकॉज वो हमारे लिए गदा भी चलाएंगे ना तो भी हमारे लिए अच्छा ही है। जब राक्षस को काटते हैं ना वो चक्र से, उसका भी उद्धार होता है ना। अभी वो मगरमच्छ को काटा तो क्या हो गया? वो भी मुक्त हो गया। हाथी को हाथ से निकाला तो भी बेचारा मुक्त हो गया। महाभारत के युद्ध में इतने सारे योद्धा उनके सामने मर गए, वो भी वैकुंठ चले गए। और अर्जुन जैसे भक्त को ले लगाया, वो भी वैकुंठ चला गया। कोई भेदभाव नहीं है, सब एब्सोल्यूट है, भगवान का परम सत्य है। भगवान जो भी करते हैं परम सत्य है। तो आगे उनके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, देखा आपने, नंद और सुनंद। वो भगवान के सेवक है, हमेशा भगवान के साथ जाते हैं, जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। वो द्वारकाधीश के पर्सनल सेवक हैं। वो जब त्रिविक्रम के रूप में आए थे ना, वामन देव के रूप में, तभी भी वो भगवान उन जब द्वारपाल बन के गए ना, तो द्वारपाल के सेवक बन के नंद सुनंद गए उनके। भगवान चाहे कोई भी रूप धारण करे, सेवक अपना सेवकत्व छोड़ता नहीं है, जो उसका परम चिरंतन स्वभाव है। दास दास अनुदास, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। हम वो भगवान के चिरंतन दास हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमारा, यहां वहां ऊपर नीचे हो जाए हमारा बैरोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साई भाव को भूलना नहीं चाहिए। साई भाव क्या है? हम भगवान के सेवक हैं। कहीं भी जाओ, हाँ, यात्रा के मैनेजमेंट में हो, यात्रा के यात्री के रूप में हो, दोनों तरफ से साई भाव एक ही है, सेवा भाव, सेवक भाव है, वो बनाए रखना चाहिए। सेवक भाव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सेवक भाव भगवान को खरीद लेता है, भगवान बिक जाते हैं उसके लिए। तो नंद सुनंद यहाँ पर सेवक भाव का दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद में लक्ष्मी और सरस्वती, जहाँ पर भी जाते हैं द्वारकाधीश, उनके साथ में लक्ष्मी और सरस्वती की प्रधान सेवा है। एक बात बताना मैं भूल गया आपको, द्वारकाधीश के मंदिर में और बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें सब प्राणियां हैं भगवान की, जाम्बवती, रुक्मिणी, लक्ष्मी, राधा रानी का मंदिर भी है उसके अंदर, लक्ष्मणा, नग्नजीति, सत्या, भद्रा, सबके मंदिर हैं। और प्रधान सेवा जो है वो लक्ष्मी जी और रुक्मिणी की, सत्यभामा की है। और क्या बताऊं आपको, बड़ी अद्भुत अद्भुत बात है यहाँ की। ये पुजारी जो है पुरुष रहते हैं, लेकिन पुजारी जी रानी का श्रृंगार करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। बोलो, रानी के भाव में करते हैं, पत्नी के भाव में, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि है, जिनका मंदिर से प्रतिनिधि बनकर जाते हैं ना वो। ऐसा भी है कि दिन भी फिक्स है उनके कि आज रुक्मिणी के मंदिर से सेवा आएगी, तो भगवान उनके हाथ से भोजन करेंगे, तो वहीं से सब कुछ आएगा, फूल आएंगे, अत्तर आएगा, स्नान किया जाएगा, उनको श्रृंगार किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, तो वहां से आता है। दिन भी फिक्स है उनके, जाम्बवती का मंदिर भी है, वहां से भी आता है खाना। ऐसा अद्भुत है भगवान के दरबार में, जो भी होता है सब अद्भुत चलता रहता है उधर। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पुजारी जी भी रानी का भेष बनकर, घूंघट ओढ़कर, गहने पहनकर जाते हैं सेवा करने के लिए। भगवान को अच्छा लगना चाहिए ना। द्वारकाधीश भाव में है, 16,108 पत्नियां हैं, गृहस्थी हैं, हाँ, सब पत्नियों में विराजमान रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है रानियों के साथ में हाथ से भोजन करने के लिए, तो उसी भाव में उसको भोजन करते हैं। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर पुरुष का है, क्या फर्क पड़ता है? भाव जो है ना वो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ फेल है, बाकी कुछ टिकता नहीं है कुछ। भाव को भगवान पे पकड़ते हैं, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन उनको कहा जाता है, भाव को पकड़ने वाले हो। तो ये द्वारकाधीश का स्वरूप दर्शन इस ग्रंथ में उसका वर्णन आता है कि द्वारकाधीश का दर्शन कितना अद्भुत है। बोलो, द्वारकाधीश भगवान की जय। जिस द्वारकाधीश को दर्शन करने से पुनः इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है, इसको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी आते हैं। जब भगवान द्वारका में थे तो एक बार ब्रह्मा जी आए, तो वैकुंठ में द्वारका है ना, वो वैकुंठ भाव, ऐश्वर्य भाव यहाँ पर, तो द्वार पे लोग उनको, द्वारपाल ने पूछा, कौन हो आप? कौन हो मतलब क्या? मैं ही तो हूँ, और कौन है? चार मुख वाला कौन होता है? और एक ही होता है ब्रह्मा। तो कोई कह दो। ब्रह्मा जी आए तो वो गए द्वारकाधीश भगवान के पास, बोले कोई आया है? बोल रहे मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो भगवान बोलते, जाके पूछो कौन से ब्रह्मा हो तुम? तो द्वारपाल ने आके बोला कि भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा हो तुम। तो ब्रह्मा जी को लगता है एकमेव अद्वितीय, एको हम द्विजो नास्ति, मैं एक ही हूं। मतलब क्या होता है, कौन है, मतलब क्या, ब्रह्मा हूं मैं, अकेला हूं ब्रह्मा मैं। अच्छा आ जाओ। तो लेके गए अंदर उनको। अरे लेकिन जब वो गए ना अंदर भगवान को मिलने के लिए, ऑलरेडी भगवान ने स्मरण किया और स्मरण करके अनेक ब्रह्माओं को आह्वान किया। तो उधर 100 हेड वाले ब्रह्मा भी आ गए, 1000 शीश वाले भी आ गए, 10,000 वाले भी आ गए, 1,00,000, 10,00,000, 1 कोटि, 10 कोटि, 1 अब्ज, 10 अरब, 10 अरब, 1 खरब। कैसे हो सकता है ये, 2 कंधे पर इतना सर कैसे रह सकते हैं, और वो दिखेगा कैसे। शिशुपाल के 3 देखा ली, 3 इतना खराब दिख रहा था वो कि माता परेशान थी उसकी। कुछ बोले कुछ करो इसको, अभी 3 सर लेके क्या करो इसका मैं। 3 सर में इतनी परेशान थी, तो ये ब्रह्मा जी के कंधे पर 10 कोटि अगर सर रहेंगे तो कैसा रहेगा। ये सब हमारी तुम्हारी सोच है। कहते हैं कि 10 कोटि सर वाला ब्रह्मा भी बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर, अद्भुत। ये भगवान की क्रिएशन है। जिस ब्रह्मांड में 4 दिशा है ना, उधर 4 मुख वाले ब्रह्मा है जो हमारा, मतलब सबसे, अभी क्या कहें, सबसे लो पावर का होता ना बल्ब, वो 15 वोल्ट का होता है, उसको हम नाइट लैम्प कहते हैं। उसको नाइट में जलाते हैं ताकि बाथरूम में कहीं गिरने जाए आदमी, इसलिए वो नाइट लैम्प ब्लू रंग का जलते रहता है। उसके नीचे कोई बल्ब ही नहीं था, उसको ही 0 बल्ब कहते हैं हम लोग। लेकिन वो 15 वाट का होता है, बाद में फिर 40 वाट का होता है, फिर 60 वाट का होता है, फिर 100 वाट का होता है, फिर 200 वाट का होता है, फिर 1000 वाट का होता है, फिर 2000 वाट का होता है ना। आपके अंदर भी ऐसा होता है ना, वैसे ही 4 दिशा वाला जो है वो सबसे नाइट लैंप वाला ब्रह्मांड है, उसमें हमारे ब्रह्मा जी विराजमान है। ऊपर हमारे गुरु जी हैं, हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य भी हैं, उनको हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको बताना चाहते हैं कि यही अंत नहीं है ब्रह्मांड का, ये एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी है। वो स्वयं जानते हैं इस बात को, लेकिन वो लीला कर रहे हैं हमको दिखाने के लिए कि हमारे समझ में आ जाए। तो गए अंदर, देखेगा अरे इतने सारे ब्रह्मा, ये क्या बात है, सब भगवान को वंदन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं उनके स्तुति में, क्या करो किम करह, पूछ रहे क्या करो आपकी सेवा में। तो भगवान बोला कुछ मत करो, जाओ अपना अपना काम करो, थैंक यू वेरी मच। तो बुलाया क्यों, दिल हुआ ऐसे बुला लिया, अच्छा है बुलाया तो दर्शन भी हो गया आपका, थैंक यू वेरी मच। सब चले गए और ये ब्रह्मा देखते रह गए, अरे बाप रे इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी। तो उनको लगा कि मैं कोने में कोई कीटक जैसा अनुभव हो गया, कि मैं एक कीटक के समान हूँ उनके सामने, इतने बड़े लोगों के, बुजुर्गों की सभा में मैं कहाँ से आ गया, ऐसा लगा उनको। तो भगवान ने उनको अनुभूति दिया कि आप भी हो, बड़े हो आप, एक ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हो, लेकिन देखो कितने ब्रह्मांड बनाए मैंने, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और सबका मालिक मैं हूँ, ये सब मेरे सेवक हैं, सब मेरे चेले हैं, ये मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं, मैंने केवल स्मरण किया, हाजिर हो गए सब लोग, पूछ रहे क्या करूं, कुछ आज्ञा है क्या। तो ब्रह्मा जी समझ गए, ऐसे हमारे द्वारकाधीश। तो जिस दरबार में ब्रह्मा को भी कीटक समान अनुभूति होती है, उसी दरबार में हमको भी उन्होंने प्रवेश दिया है। तो हमको क्या लगना चाहिए, अमीबा कि पैरामेशियम, क्या लगना चाहिए, आपकी बायोलॉजी क्या बोलती है। यही है भक्त की अनुभूति, यही है कि आई एम नथिंग, आई एम मिस्टर नथिंग, स्टिल आई एम समथिंग, बिकॉज आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। एकदम मैं तुच्छ अणुमात्र अंश हूं उसका, लेकिन हूं जरूर मैं, उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे उपस्थिति को भी कोई मतलब है, कोई अर्थ है, कोई परिपूर्णता है उसके अंदर, क्योंकि भगवान का अंश है हूं मैं। लेकिन गर्व करने की कोई बात नहीं उसके लिए, भगवान का हूं इसलिए कीमत है मुझे, अपने आप में कुछ कीमत नहीं है, भगवान का अंश हूं इसलिए वैल्यू है उसके अंदर। तो कितने बज गए, 8 बज गए, कितने हमारे मैनेजर, क्या कहना है आपका, 8:15। हरे कृष्णा। तो अभी सुबह हमने रुक्मिणी देवी का चर्चा किया था, है ना। तो रुक्मिणी देवी कितनी महान है, देखो उसका एक कथा भागवत में आती है, वो बताऊंगा आज को मैं। एक बार ऐसे ना भगवान रुक्मिणी के दरबार में, मतलब जहाँ रुक्मिणी का महल है, कौन से रंग का है बताओ, नोट बनाया था सुबह, हाँ स्वर्ण रंग का है, नोट्स क्या कहता है आपका बताओ, बताओ बताओ,
जरूरी है ना, तो बता के फायदा क्या है? सुबह बताया हुआ शाम को खत्म हो गया तो सुबह बता के फायदा क्या है उसका? 469।
हाँ क्या? नहीं, रुक्मिणी का महल कौन से प्रकार का है ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। सुबह मैंने सब वर्णन किया था ना, सत्य मामा का श्वेत रंग का है और उसके बाद वाली रानी का सप्तरंग का है, स्वर्ण रंग का है ना, फिर कितना टाइम लगा बताने को। एनीवेज, तो वो स्वर्ण रंग के महल में भगवान कृष्ण विराजमान थे। विशेष बात ये है कि आगे मैं बताऊंगा, कल परसों आपको कहानी आएगी धीरे धीरे, कि भगवान ने 16108 रानियों से विवाह किया और स्पेशल एक टापू पर अपने ये महल बनाए, खुद का अलग महल, सब रानियों का अलग महल और हर एक रानी के साथ में एक स्वरूप भगवान का। और आपको लगता है भगवान और रानी को लगता था कि भगवान तो मुझे छोड़ के जाते ही नहीं कभी, और दिन में भगवान दरबार में भी बैठे हुए हैं, लेकिन 16108 महल में जाएंगे तो उधर भी बैठे हुए हैं। फिर नारद मुनि एक बार देखने को आए, वो मैं कथा बताऊंगा बाद में आपको। एनीवेज, तो क्या कर रहे हैं भगवान? रुक्मिणी के महल में बैठे हुए हैं। हाँ देखो, रुक्मिणी के महल की शोभा देखो आप, रुक्मिणी के महल में विराजमान है, बहुत सारी दासियां हैं, फिर भी रुक्मिणी अपने हाथ में चामर लेकर उनकी सेवा कर रही है ना, इसको प्रेम कहते हैं। जो लोग जो काम सेवक से भी कर सकते हैं लेकिन वो खुद कर रहे हैं। यशोदा माई भी खुद नहला देती है भगवान को। आज करके माताएं क्या कहें, सर्वेंट एंगेज करती हैं, बोल जाओ बच्चे को नहलाओ, ये करो वो करो। हाँ मैं खाली फोन करूंगी और कोऑर्डिनेट करूंगी सब सेवा लेकिन यशोदा माई अपने हाथ से भगवान को नहला देती। हाँ इतनी सेविकाएं थी, दूध खुद निकालती थी, फिर भी वो मंथन खुद करती थी, मक्खन खुद निकालती थी, वो सेवकों को ऑर्डर दे सकती थी, ए सब सब लोग 10 मटके बना दो, 10 किलो मक्खन चाहिए मुझे भी, खाना आने वाला खेल के नहीं, खुद गीत गाते हुए मंथन करती थी। एनीवेज, तो रुक्मिणी उसके महल पर जो मंडप था उस पर मोतियों के झालर लगी हुई थी जो दीपक की तरह काम कर रहे थे, प्रज्वलित कर रहे थे महल को। फिर फूलों की मालाएं सब जगह फैली हुई थी, जो चंद्र किरणें हैं वो उनके पत्थर पर, मतलब वो जो है ना मणि लगे हुए ना उस पर परावर्तित होकर चमकदार रूप में महल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या वर्णन करें उनके घर का, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, पारिजात का खुशबू लेकर द्वारकाधीश भगवान के लिए वो हवा खुशबू लेकर आ रही है द्वारकाधीश के लिए रुक्मिणी के महल में। और वो कोच कैसा है उनका बैठने की जगह, वो कहते हैं दूध के झाग की तरह सफेद हस्तिदंत का बना हुआ फर्नीचर था उनके घर पे। हाँ तो रुक्मिणी हवा दे रही है, भगवान को लगा मजाक कर लेते हैं उनके साथ में, तो उन्होंने कहा हे रुक्मिणी तुम ना इतनी बुद्धिमान नहीं है, तुम्हारे लिए कितने राजा तड़प रहे थे, कितने राजाओं ने तुम्हारे लिए मांग की थी, तुमको उनसे शादी करनी चाहिए थी, वो कितने बलवान थे, राज्य वाले थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भागा हुआ आदमी हूँ, ये राक्षसों के भय से मैं आकर समुद्र के अंदर छुप गया अभी देखो देखने की बात है, आप जैसा देख रहे हो वैसा आपको दिखेगा भगवान को बता रहे हैं कि देखो मैं मथुरा में था कि नहीं, वहाँ पर काले आवन जरासंध आने वाला था कि नहीं, तो मैं वहाँ से देखा डर गया तो मैं वहाँ से समुद्र में आया और वहाँ पर घर बना दिया अपना, ताकि वो राक्षस का मुझे डर लगता है बहुत, नो मेरे पास क्या है, सब उग्रसेन महाराज का है, मेरा कुछ नहीं है, और मैं चोर भी हूँ, बेटों ने बहुत चोरी किया मैंने तो कैसा आदमी को तुमने चुना? तो बोलते हैं जो स्त्री ऐसे प्रकार के व्यक्तित्व के पुरुष के साथ रहती है ना उसका भविष्य बहुत अंधकार में होता है कैसे भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में देखो, और ऐसे लोगों के साथ रहना समाज भी उसको अप्रूव नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं भगवान। मेरे पास कुछ भी नहीं है और देखो मेरी पूजा कौन करता है, गरीब से गरीब आदमी मेरी पूजा करता है,
और बेचारा कोई धनवान होता भी है मेरी पूजा करता तो गरीब हो जाता है। वो देखो शिव जी को देखो, जो गरीब आता है उनके पास में मालामाल हो जाता है, मेरे पास देखो क्या हो रहा है। और तुम मेरी पूजा करते हो, तुम्हारा भी भाग्य शायद फूटा हुआ है। विवाह और मैत्री उन लोगों के साथ में करना चाहिए जो बराबर वाले होते हैं। बराबर कैसे? जन्म से बराबर वाले होते हैं, धन से बराबर वाले होते हैं, शरीर से बराबर होने चाहिए, जिनका प्रभाव भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके विवाह होना चाहिए। हाँ, मैचिंग। लेकिन आपने एक निचले वाले दर्जे वाले आदमी से विवाह किया। आप तो भीष्मक राजा की महान कन्या थी, लेकिन मैं तो ग्वाल बाल हूँ, बचपन से मुझे क्या ट्रेनिंग मिला है, मैं तो गांव में जन्म मेरा हुआ था, गांव में पला मैं, गोबर गोमूत्र इस खुशबू में मैंने जीवन बिताया, गाय को चराते हुए, कोई कल्चर नहीं आता मुझे, बड़े लोगों के बैठ के ऐसे बात करनी होती है, क्या संस्कार होते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई शिष्टाचार पता नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। ये मेरा बैकग्राउंड है बाय द वे। हाँ, मैं सच बताता हूँ, मैं ऐसे ही बैकग्राउंड से आया हूँ। आप तो विश्वक राजा की कन्या हो, राज कन्या हो आप तो। हे वेदर भी, आपको दूरदृष्टि नहीं है, यू कैन नॉट सी फार साइटेड। अगर आपको ये पता होता ना तो मुझे पति चुनने का मिस्टेक आप नहीं करते। इसलिए मैं आपको अभी भी कहता हूँ, विचार कर लो आप, अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी बहुत राजा कुमार वहाँ पर रेडी है आपके लिए, आप उनको चुन लो, अपना जीवन सुधार लो, इस मुझ ग्वाले के साथ में जीवन बर्बाद मत करो। क्या लगता है आपको सुनकर? ये आप लोग तो हंस रहे हैं इधर बैठ के, सब लोग हंस रहे हैं। देखो उधर रुक्मिणी के हाथ से चामर गिर गया और उसका बीपी एकदम डाउन हो गया, मतलब अभी हम डॉक्टर ना समझ सकते हैं कि उसको क्या हो गया रहा एक्चुअली, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे गोल गोल घूमने लगी ऊपर की ओर, दोनों ऐसे बीच में आ गई आंखें उनकी, और कुछ समझ में नहीं, अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब हाइपोटेंशन है ना, तो वैसे ऐसे गोल गोल घूमने लगी, चमर गिर गया, हाथ पाँव लटकने लगे उसके, और वो धाड़ करके जैसे डंडा गिरता है ना उसे, जमीन पर गिर गई। वो जो अच्छे बाल संवारे हुए थे, वेणी वेणी लगाए थे, सब खुल गए उसके और बिखर गए, पूरे पूरे गहने वहने फैल गए उसके इधर उधर, वो धाड़ करके गिर गई वो। तो भगवान को लगा कि गंभीर मामला है, मैंने तो मजाक किया था उनका। हाँ, लेकिन सभी गंभीरता से सुना उसने, दिल के हजार टुकड़े हो गए उसके ये बात सुनकर कि मेरे पति जो है वो मुझके अभी छोड़ के जाने वाले हैं। वो कह रहे तुम जाओ, लेकिन जाने वाले खुद लगता है, खुद जाने वाले हैं ऐसा लगता है। ये सब कहने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं मुझे छोड़कर, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि कोई ढूंढ लो, अच्छा मैं तो ऐसा ही हूं, मतलब क्या, बाय बाय सी यू। ये मैसेज उसने लिया और तो बेहोश हो गई वो। तो भगवान एकदम गंभीर हो गए। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी का दिमाग जो है ना कंप्लीटली वो एकदम तितर बितर हो गया है, शी लॉस्ट हर कंपोजर, हाँ इंटेलेक्चुअल कंपोजर, सब दिमाग समाप्त हो गया उसका, काम करना ही बंद हो गया, चामर गिर गया, खुद बेहोश हो गई। फिर जैसे बड़े तूफानी हवा से एक केले का पेड़ गिर जाता है ना, वैसे वो गिर गई। तो भगवान ने समझा, समझ गए भगवान कितनी सीधी सादी स्त्री है ये, सिंपल हार्टेड लेडी। उसके मन में मजाक भी इतना गंभीरता से उसने लिया, शी सो डेडिकेटेड, अपने पति के लिए इतनी डेडिकेटेड है वो कि पति मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी कोई ढूंढ लो, तो वो बेहोश हो गई वो। तो सरल हृदयता जो है ना, ये भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, मन में कोई किंतु परंतु मत रखना, कपट मत रखना, अपना पराया भाव मत रखना, हृदय को सरल रखना हमेशा, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट पर्सन, तब आप बच सकते हो। तो भगवान भी मजाक कर रहे हैं, एक ऐसा एक वो आगे जाके बताते हैं, अरे पति पत्नी का जीवन क्या है, एक दूसरे का मजाक करना, हंसी खेल में रहना, ऐसे भगवान कुछ बता रहे हैं आगे जाकर कैसे रहना चाहिए, ज्यादा सीरियसली मत लेना ही चाहिए। ठीक है, एक दो बातें इधर बोल दें तो क्या हो गया, आखिर तो मेरे पत्नी तो है, मेरा पति तो है, मेरे बच्चे तो हैं, डोंट टेक इट सो सीरियसली, हाँ टेक इट लाइफ इजी, टेक इट इजी मैन, डोंट वरी। भगवान ऐसे आगे जाके उनको बता रहे हैं जब सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर
भगवान ने क्या किया, वह नीचे उतरे, भगवान ने चार भुजाएं प्रकट की, दो भुजाओं से उसको गोद में लिया, दो भुजाओं से उनके बाल सवारे, प्रेम से दुलारा उनको, रुक्मिणी जग जाओ रुक्मिणी, दो हाथों से अपने उसके आंसू पोंछ लिए, ऐसे वर्णन आता है जब वो रोने लगी ना सुनकर सब कुछ ये, तो उनके काजल जो है वो अश्रु में मिश्रित होकर से गिरने लगे, साड़ी को पूरा गीला कर दिया उसने। तो भगवान ने उस आंसू को पोंछा, चिंता मत करना मैं यही हूँ, भगवान ने उनको प्रेम से आलिंगन दिया। तब जाके रुक्मिणी के प्रेम की गंभीरता का जो सीमा है ना, वो भगवान को ध्यान में आया कि कितनी गंभीरता है उसकी प्रेम के अंदर। तो भगवान ने कहा हे वैदर भी, हे रुक्मिणी देवी, चिंता मत करना, दुखी मत होना, मैं आपका मेरा ऊपर कितना प्रेम है इसकी परीक्षा ले रहा था, मुझे भी आपका सुनना था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं जब ऐसा कहूंगा तो आपके होंठ कांपेंगे क्रोध से, आंखें लाल हो जाएंगी और आप डांटेंगी मुझसे, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने सत्यभामा को मैंने वो पारिजात का फूल दिया था तभी भी आपने कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जब मुझ पर भगवान प्रेम कर रहे हैं दूसरों को कुछ भी दे क्या फर्क पड़ता है। हम बोलेंगे देखो मैंने भजन किया 16 माला, इन्होंने भी किया, ये तो करोड़पति बन गई, मैं तो झोपड़ी में रह गया, उनको क्यों ज़्यादा दिया, भक्त ऐसा सोचता नहीं है। बोले क्या फर्क पड़ता है, जब तक भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ, दुनिया को कुछ भी दे देना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि तुमको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहिए और तुम्हारा क्रोध भरा चेहरा मुझे देखना था, उस क्रोध भरे चेहरे का सौंदर्य क्या होता है उसका अनुभव करना था, इसलिए मैंने इतना जरूरत की आपको ऐसे बातें करने की, माफ करना मुझे, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आपका गुस्से में देखना था कि गुस्से में आप मुझे देख रही हो, माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी, भगवान ने कहा है आई एम वेरी सॉरी फॉर द पेन गिवन टू यू, आपके भवें क्रोध से विकृत होते हुए देखना था मुझे, लेकिन मैं ये जानता नहीं था कि मेरे मजाक के शब्द आप इतने गंभीरता से लोगी, अगेन आई एम सॉरी रुक्मिणी, आफ्टर ऑल द ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर अ मैरिड मैन इज टू पास टाइम जोकिंग विथ हिज बिलेफेड वाइफ, यही मैं करने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद में रुक्मिणी शांत हो गई और भगवान मुझे छोड़ के जाने वाले हैं ये भय से मुक्त हो गई और बड़े प्रेम से भगवान को देखा और प्रेम भरे नज़र से भगवान को देखा और नज़रों से भगवान को संपृक्त कर दिया उसने। तो भगवान ने जो भी कहा ना उसका पूरे काउंटर आर्गुमेंट दिया, वो कहते हैं आप बोल रहे हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ये भी सही है क्योंकि सब कुछ तो आपके अंदर ही है ना, एवरीथिंग इज विद इन यू, तो आपका क्या है उसके अंदर, सभी आप ही हो, सब धन दौलत ऐश्वर्य सब आप खुद हो, तो आपका क्या है उसके अंदर, आपका कुछ नहीं है, सब आप ही हो, हम आपके भी हैं, हम भी आपके हैं, समझ में आया ना आपको, लॉर्ड इज सेइंग कि मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि सब उनके अंदर है, तो मेरा क्या है, मैं ही हूं सब कुछ, ये सही है रुक्मिणी बोल रही है, इसलिए आपके लिए पजेस करने के लिए कुछ नहीं है, आपके भक्त लोग आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं इसलिए वो गरीब होते हैं, वो स्वेच्छा से सब कुछ त्याग देते हैं, आप चिंते हो ये दूसरी बात है, लेकिन वो स्वेच्छा से आपके लिए आपको पाने के लिए सब धन छोड़ देते हैं, इसलिए वो निर्धन नजर आते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े धन को प्राप्त करने के लिए, नीलमणि को प्राप्त करने के लिए दुनियादारी का नश्वर धन वो छोड़ देते हैं, इसलिए आपकी बात ये भी सही है। दूसरा क्या बोलते हैं, वो आप एक ही ऐसे व्यक्ति हो जो जिसका संग लेना योग्य है, बाकी सब बेकार है। अरे आप अपने आप को कहते हो कि मैं क्या के दर्पक हूं, ये कैसे हो सकता है, जब आप आए ना मुझे लेने के लिए तब आपके धनुष की प्रत्यंचा का टणत्कार सुन के सब बेहोश हो गए थे और आप कहते हैं आप कमजोर हो और डरपोक हो, सारे राजा मुझे देखकर लालायित होकर आए थे आपको युद्ध करने के लिए, आपका ही धनुष का आवाज सुनकर वो डर गए, सब लोग भाग गए, सब लोग। ए वुमन हु फॉल्स टू अंडरस्टैंड ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट बिकम कंप्लीट इन फूल्ड एज एक्सेप्ट हर हस्बैंड एज अ बैग ऑफ स्किन
अभी एक पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनो उसको, मैं आपको अनुवाद करके बताऊंगा. अ वुमन हु फेल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ योर लोटस फीट बिकम्स कंप्लीटली फूल्ड. दस शी एक्सेप्ट हर हजबेंड एज अ बैग ऑफ स्किन डेकोरेटेड विथ मुस्टैच बियर्ड अदर हेयर एंड फिल्ड विथ मसल्स बोन पस ब्लड पोल्यूटेड एयर स्टूल यूरिन एंड म्यूकस एंड बाइल एंड पैरासाइट्स. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान पर दिल लगाने में फेल हो जाते हैं, हाँ, भगवान को अपना बनाने में असफल रहते हैं, भगवान पर दिल लगाना नहीं जमता है उनको, ऐसे लोग फिर दुनिया के जो लोग हैं ना उन पर दिल लगाते हैं. क्या करना है, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए ना प्रेम करने के लिए. तो जो ये सब का बैग है, क्या क्या बैग है, बैग के अंदर क्या क्या है? स्टूल यूरिन कफ वात पित्त, हाँ, मसल हड्डी खून, इससे बना हुआ बैग है. उसके ऊपर क्या है, कुछ बाल है, उन कुछ बालों को हम लोग मिशी कहते हैं, कुछ बालों को हम लोग दाढ़ी कहते हैं, कुछ बालों को हम सर के बाल कहते हैं, हाँ, ऐसे अलग बालों से ये बैग सजाया हुआ है, उसको ही अपना मानने लगते हैं. लेकिन आप पर जो दिल लगाते हैं उनका दिल ये बैग में से हट जाता है. ये बैग में लटका हुआ दिल जो है वो आप पर जब लगता है तो इसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो आदमी सफल हो जाता है जीवन में. इसलिए उन्होंने, भगवान ने एक बात बताई थी, देखो तुम लोग को लगता है सब पत्नियों को कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे में इतना दिल लगाता हूँ, तुम जानती नहीं मुझे, मैं तो बंजारा हूँ, मैं किसी पर प्रेम नहीं करता, मैं किसी पर आसक्त रखता नहीं हूँ, मैं खुद में ही मस्त रहता हूँ. इसलिए आपको लगता होगा कि मेरा दिल आप में अटका हुआ है, ये गलत फहमी आपकी, ऐसा भगवान ने उनको बताया पहले वाले संभाषण में. तो बोलते सही बात है, क्योंकि आप सच में आत्माराम हो. हाँ, यू रेयरली टर्न योर अटेंशन टूवर्ड मी, स्टिल आई प्रे यू ब्लेस मी विथ योर अनवेवरिंग डिवोशन ऑफ लोटस फीट. मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा आत्माराम हो, आप अपने आप में ही मस्त हो, लेकिन फिर भी आपकी हमें ज़रूरत है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रदान दीजिए कि आपके चरणों के प्रति मेरा हृदय हमेशा आसक्त रहे, ये मुझे वरदान दीजिए आप. तो भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी, हे प्रिय, मैंने तुम्हें ऐसे सब बातें कह करना थोड़ा फंसाने का कोशिश किया, मुझे माफ़ कर देना. अभी मैंने आपके शुद्ध प्रेम का अनुभव किया है और आपके पतिव्रत धर्म का भी अनुभव किया है. यू आर चेस्ट अटैचमेंट टू मी, इसका भी मैंने अनुभव किया है. इवन दो यू बिकम डिस्टर्ब बाय माई वर्ड्स, आप बहुत दुखी हो गए मेरी बातों को सुनकर, फिर भी ऐसे दुखी अवस्था में भी आपकी श्रद्धा और निष्ठा जरा से भी हिली नहीं, इस बात पर मैं बहुत प्रसन्न हूं. ऐसा नहीं कि अच्छा जा रहे हो जाओ मैं भी देख लेती हूँ किसी, आपको कोई जरूरत नहीं आपकी. हम लोग क्या झगड़ा करते हैं, कैसे बोलते हैं, यू डोंट वांट मी, आई डोंट वांट यू. आप क्या समझते हैं, कई पड़े हुए मेरे पीछे आने के लिए, ऐसा पति भी बोलता है पत्नी भी बोलती है. लेकिन रुक्मिणी ने नहीं बोला ऐसे, भगवान बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े राजा आपके पीछे हैं, मुझे मेरी क्या जरूरत है आपको. लेकिन फिर भी भगवान ने उनको अप्रिशिएट किया है कि आपकी श्रद्धा और निष्ठा मुझ पर एक कर्ण भी विचलित नहीं हुई. इसमें एक सभी पतियों को एक शिक्षा है, प्लीज डू अप्रिशिएट योर वाइव्स, हाँ, डोंट फेल टू अप्रिशिएट योर वाइव्स, दे नीड अप्रिशिएशन एज मच एज यू नीड अप्रिशिएशन. जितना आपको भी शाबाश के जरूरत होती ना उतनी उनको भी होती है, उससे क्या होता है ना प्रेम बढ़ता है. जब भगवान ने मजाक किया, थोड़ा दुख दिया, बेहोश हो गई, जब होश में आ गई तो पहले से कई गुना प्रेम बढ़ा उनका. और इस तरह से भगवान कहते हैं, मेरे सारे महलों में, भगवान बोल रहे हैं अभी है, ये भगवान की खासियत है, विशेष खासियत है. वो कह रहे हैं मेरे इतने सारे महल है, इतनी सारी रानियां हैं कि तुम मेरी स्पेशल पत्नी हो, बोल रहे हो. अब बाय द वे ऐसा वो सब पत्नियों को बोलते हैं. और वो सच भी है. जैसे फॉर एग्जांपल ना, प्रभुपाद जी हमारे थे, जो जब जाते थे ना ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, हम जो इंग्लैंड में जाते थे, भी स्पेन में जाते थे, भी बेल्जियम में जाते थे, और जब उस मंदिर में रहते थे बोलते थे दिस इज द बेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड. तो एक भक्त ऐसा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी था और वहाँ पर सुना था उन्होंने कि वहाँ पर प्रभुपाद ने कहा था कि दिस इज द बेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड. तो वो खड़ा हो गया, बोला प्रभुपाद जी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था, उधर भी कहा था आपने कि दिस टेम्पल इज द बेस्ट, तो सच क्या है एक्चुअली, कौन सा टेम्पल बेस्ट है बताइए कि वो। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस वक्त मैं जहां पर हूं वो मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि वो नाटकी नहीं थे, वो ड्रामा नहीं करते थे, उनको हृदय से बोलते थे वो। तो वैसे ही अगर भगवान यहां बोल रहे हैं, रुक्मिणी को बोल रहे हैं कि आप ना मेरे सब पत्नी से बेस्ट हो, तो वो भी सच है। सत्य मामा के कमरे में गए, बोलेंगे कि सत्य मामा तुम सबसे बेस्ट हो, तो वो भी सच है। ये भगवान की खासियत है, वो 16108 रूप बनाकर हर एक पत्नी को अपना समय दे रहे हैं और सबको ये महसूस करके दे रहे हैं कि ये मेरे साथ ही रहते हैं। उनको पता नहीं कि बाकी महल में भी है, उनको कहाँ पता है, मेरे साथ में है, आज काम पे भी नहीं गए, पता नहीं राज दरबार में कौन बैठा है। वो सब मंत्री बोल रहे हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं वो। उद्धव जी बोलते हैं मेरा साथ एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं हो, मैं खाता पीता उठता बैठता चर्चा करता मंत्रणा करता शिकार करता इनके साथ में रहता हूँ मैं हमेशा, ऐसे उद्धव जी बोल रहे हैं। पत्नी बोल रही है अरे हर समय मेरे साथ में रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं मेरा संग यहाँ पर। और सब पत्नियाँ जब मिलकर बोलती हैं अरे मेरे साथ ही रहते हैं, बोलते हाँ मेरे साथ भी रहते हैं, यही तो भगवान है, इसलिए वो भगवान है। जब गोपियों के साथ नृत्य किया था तो भी यही स्थिति थी, सबको लग रहा था कि सभी गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तैसे इस अध्याय में दसम स्कंद के इस अध्याय में भगवान ने भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी देवी के प्रेम का अति उत्कट अनुभव किया मजाक के मजाक में, और इस प्रकार से कैसे पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए इसका एक आदर्श भगवान ने यहां पर प्रस्तापित किया है। जय द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।